Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग।
थैंक यू मनोज। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स जंप्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,350। मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन ओवर 3%।
घरेलू शेयर बाजार में लाभ के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 24,350 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार घाटे के साथ बंद हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 3% से अधिक घटी।
Friends, before we move further, here's a disclaimer for you all. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right?
Yeah. Are you? शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से एशियाई बाजारों से मिले कमजोरी के संकेत के बाद भी घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों ने खरीदारी की और प्रमुख सूचकांक 0.65% लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 505 अंक बढ़त के साथ 78,494 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 157 अंक बढ़कर 24,354 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों पर ध्यान दें तो वहां भी अच्छी खासी खरीदारी की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मिड कैप 100 इंडेक्स लगभग 1.3% लाभ के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड टुडे सेशन 0.65% हायर। The Sensex soared 505 points to close at 78,494, while Nifty advanced 157 points to settle at 24,354. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 rose nearly 1.3%, while the small-cap 100 climbed almost 1.5%. Despite a subdued start influenced by Asian market cues, bulls gathered momentum through the session, lifting the market higher by the close.
नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर। सेंसेक्स की 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। सबसे अधिक लाभ में रही हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, जिसके शेयर 4.7% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। पावर ग्रिड को लगभग 1.9% का लाभ हुआ। रिलायंस के शेयरों में 1.6% की वृद्धि हुई। उधर घाटा उठाने वालों में सबसे अव्वल रही कंपनी सन फर्मा, जिसके शेयर 1% से अधिक नुकसान में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 0.7% का घाटा हुआ और एचसीएल टेक के शेयर 0.6% नुकसान में रहे।
Among the sectoral indices at the BSE, all 25 sectors registered upward move. Among the top gainers, FMCG surged nearly 2.6%, capital goods jumped 2.2%, and power advanced almost 2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 3,043 companies advanced, 1,284 declined, and 166 remained unchanged.
नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 27 पैसे मजबूत हुआ, 92.93 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.09 पर चल रहा था।
So, Sushma, how do you view the whole situation? It's been snakes and ladders in the last few months, especially ever since this war broke out. How do you see it going? Because today the Sensex went up and that looks heartening. And if you actually look closer, US has been softening a bit. Not a single vessel has been detained. They have expressed some kind of restraint in their behavior. So much is banking on what the US president says and does. Yes. How do you view this?
Well, you know, you are right. There's been a lot of volatility in the last few months, few weeks, especially after the Iran war. And, of course, the last thing that you mentioned, that as soon as the president, the U.S. President Trump says anything, there is a reaction in the market. Now, the latest, of course, is the fact that he has announced that there has been some kind of an agreement reached between Israel and Lebanon, some kind of a peace deal for the time being, ceasefire. And that has definitely calmed the markets. And, of course, the last few days, there's also been talk of, you know, the negotiations between the U.S. and Iran might revive. There might be some more talks in Islamabad. So these are some things that have certainly calmed the markets. You see the impact definitely over here. And there's the prices, though, oil prices, though, still remain high, but they are not crossed. They're not crossing $100, which is a relief for the market. And therefore, you can see this in the market performance. There is more of a bullish trend. There's a sense of relief, I think, that is going through the equity markets.
सुषमा जी, यदि हम बाजार में आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो एशियाई बाजारों में आज कमजोरी का रुख रहा। यदि हम कल भी ध्यान दें तो एशियाई बाजारों में कल अच्छी खासी लिवाली की गई थी। अपने यहाँ कल छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहा था। सेंसेक्स और निफ्टी थोड़े से घाटे में रहे। आज एशियाई बाजारों में कमजोरी, हमारे यहाँ तेजी, क्या मुख्य कारण आपको दिख रहा है बाजार में, भारतीय बाजारों में विश्वास के प्रति?
देखिए, एशियाई बाजारों में उनका जो नजरिया है वो थोड़ा सा फर्क है। उनकी जो दूरी है मिडल ईस्ट से वो थोड़ी सी हमसे ज्यादा है। अगर वहां सीज फायर भी हो जाए एकदम से, तो वहां से तेल पहुंचने में भी काफी टाइम लगेगा। अगर समझ लीजिए कि अभी प्रोडक्शन ये गल्फ कंट्रीज में फिर से रिवाइव हो जाए और ये जो शिपमेंट्स हैं वो एकदम से शुरू हो जाए, और अभी जैसे लालिमा ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से धीरे धीरे शिप्स जा रही हैं, वो जा रही हैं, लेकिन अभी जो आउटपुट की प्रॉब्लम है वो ये है कि कई सारी फैसिलिटीज जो हैं गल्फ कंट्रीज में, उनके ऊपर ये ईरान ने वार किया है, वो डैमेज हो गई है। कतार ने तो इतने तक कहा है कि हमें तो 5 साल लग जाएंगे नॉर्मल प्रोडक्शन को रिवाइव को इस्टैब्लिश करने में। तो हमारा देश जो है, अब जियोग्राफिकली हम ज्यादा पास हैं वेस्ट एशिया से। ये जो बाकी के जो एशियाई देश है उनको इंडियन ओशन पार करके चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारी जो कंट्रीज हैं उनके लिए डिस्टेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। और अगर ये सीज फायर हो भी, उनमें ये अभी भी ये डर बैठा हुआ कि कब तक ये तेल के स्टॉक्स आ जाएंगे। हालांकि एक देश ये है चाइना, जिसमें उनके रिजर्व्स तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सारे कंट्रीज की ये इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है।
Sushma, amidst the war situation, one thing which took was the tariff, tariff terrorism, as everybody was calling it, that has taken a back seat, especially after the Supreme Court verdict in the US. Are the US companies wary of Trump's fresh tariff plan under 301?
Yes, they have. Apparently, I mean, there are reports that they have reached out to the US government. They have said that, you know, if you are going to start this this kind of inquiries under Section 301, then, you know, it will, these tariffs will impact on us because we are going to make investments over there. We want to make sure that our products don't have to face these kind of tariffs. So this is something that American companies themselves have appealed to Trump. So it has to be seen how far the Trump administration listens to them. The other thing, of course, is that in the context even of Asian markets and India, is that the waiver of sanctions that had been given to Russia and Iran is the America says no, now that has ended, 1 month is over, or ab aapka jo hai ye waiver khatam ho jayega. So this is another problem that is to be faced not just by India but by all these countries in Asia.
यदि हम घरेलू बाजार पर एक बार फिर से लौटें सुषमा जी, तो आज आज में यदि हम देखें तो 25 के 25 सेक्टर सारे लाभ के साथ रहे हैं. यदि हम सेंसेक्स पैक को देखें तो वहां भी 30 में से 24 कंपनियां लाभ के साथ रही हैं. कल आईएमएफ प्रमुख ने कहा था कि भारत में विकास दर अच्छी बनी रहने की आसार है. जो एफआईआईज हैं उनका निवेश भी अच्छा खासा फिर से रुझान बना है भारतीय बाजार में. तो ये रुझान क्या लग रहा है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हमारे हमारी विकास गाथा में विश्वास अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भी और जो हमारे अपने डीआईआईज हैं उनका भी बना रहेगा और बाजार अपना अब यहां से आगे की ओर जाता दिख रहा है आपको?
इनफैक्ट ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही. ये इनफैक्ट ये आश्चर्य की बात है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बाकी दो देशों का जो की जो ग्रोथ की जो गतिविधि है उसको कम कर दिया है, लेकिन हमारे देश भारतवर्ष के लिए हिंदुस्तान के लिए तो उन्होंने तेजी लगाई, मतलब बढ़ा दी है इसकी ग्रोथ रेट. तो वैसे भी अगर आप और भी अगर रिसर्च स्टडीज देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, कुछ स्टडीज की गई हैं कि ये जो तेल के दाम हैं इनका असर क्या होगा. मेरे ख्याल एक किसी रिसर्च एजेंसी ने किया है और उस रिसर्च में उन्होंने कहा कि सारे जो एशियाई मार्केट्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा लेकिन इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इतना रिजिलियंट है. इंडिया के और भी इनकी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी ज्यादा है, इनके वो कोयला भी है, और इनकी जो रिजिलियंस है वो पहले भी हमने देखा है पैंडेमिक के वक्त भी जी. और यूक्रेन वॉर के बाद भी हमारा देश फिर भी हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ वो सबसे तेज रफ्तार से चलती गई पूरे दुनिया भर में. तो ये जो असेसमेंट है ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मार्केट्स को भी ये एहसास है कि जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी वो अभी भी जारी है.
That's also the result of the fact that in the last 11 or 12 years, the government probably foresaw, you know, right from the day the government came, we talked about Atmanirbhar Bharat, self-reliance. Yes. So we moved into nuclear energy, we expanded into wind energy, yes. solar energy. In solar energy, we had this ISA, International yes. Solar Alliance, which yes. we initiated, yes, yes. our Prime Minister initiated, and we have done better in that, and mm-hmm. That's going strong. Yes. That also gives us a bit of confidence.
Yes. In fact, I think when the Make in India policy was launched, there was considerable skepticism that perhaps we're just going back to the old policies of import substitution, but it has actually proved that the fact that we have tried to insulate ourselves in terms of being a little more self-sufficient has helped us in this recurring global crisis.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां आज बिकवाली तेज रही. जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 1.75% लुढ़क गया. हांगकांग के हिंगसेंग में 0.9% की गिरावट हुई. दक्षिण कोरिया का कोस्पे 0.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% नुकसान के साथ बंद हुए. यूरोप के जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख था. अंतरदिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक लगभग 0.5% लाभ के साथ समाचार तैयार की जाने तक चल रहे थे, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.3% नीचे कारोबार कर रहा था.
A look at the US markets now. Wall Street ended on a positive note yesterday. The S&P 500 and tech-heavy Nasdaq both touched their all-time highs for the second consecutive day, driven by optimism that the worst of the West Asia conflict had passed. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose almost 0.4%, S&P 500 advanced nearly 0.3%, and the Dow Jones Industrial Average added over 0.2%. Meanwhile, Israel agreed to a temporary ceasefire with Lebanon, while President Donald Trump signaled that the United States and Iran could meet again for a second round of peace talks. One thing which is everybody's very curious is that they started it all, US and Israel, and how is US affected by it? And the fact that their Nasdaq has touched an all-time high, how do you see it? Because inflation has gone up in
yes,
the US.
Inflation has certainly gone up. And of course, this is a rebound, the Nasdaq, because to the news that the US and Iran may reach a peace agreement. But we also have to remember that their Nasdaq and is very tech heavy. And there is, of course, right now what they call a bubble for the big tech companies as far as AI is concerned.
Right.
So that even before the Iran war, there was a feeling that all these companies are overvalued. The markets are just going into this very over-optimistic bull run. And it's some kind of a bubble that may burst at any moment. But right now, I think the reaction of the American markets is basically to the moves towards peace, which will bring a lot of relief to corporates, which, you know, obviously all kind of investments and movement is affected by energy, and energy supplies have been disrupted around the world. So obviously they are looking forward to some kind of a peace deal.
यहाँ पर यदि हम चीन और अमेरिका दोनों के साथ यूरोप को भी जोड़ लें तो आने वाले दिन कैसे दिख रहे हैं तेल संकट को देखते हुए और कुल मिलाकर जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उस पर बार बार चर्चा की जा रही है कि वो कहीं गहरे बाधित हुई है क्या दुनिया एक नए विकल्प को ढूंढने की दिशा में बढ़ रही है हर देश में अपने अपने अलग प्रावधान किए जाएंगे एक ब्लॉक के रूप में
ये आपकी बात मतलब बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस जरिए में ये सेल्फ रिलायंस के जरिए में कि हमें अपना अपना देखना है अब देखिए अभी ये है कि पिछले दो तीन सालों में यूक्रेन की जो वॉर के बाद यूरोप ने अपना पूरा जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी सप्लाई का जो मैकेनिज्म है बिल्कुल बदल दिया पहले वो रूस से ले रहे थे तेल और नेचुरल गैस भी और ज्यादातर मतलब 70-80% उनका वहीं से आता था अब उन्होंने इतना कम कर दिया 20-25% कर दिया है और वो लेते हैं तेल अमेरिका से और बहुत सारी और देशों से तो ये जो पिवट समझ लीजिए ये हुआ है दुनिया भर में क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं अब इंडिया ने भी ये पिवट लिया था दो तीन साल पहले कि रशिया से क्रूड लेने का अब उसके बाद इस साल सैंक्शंस इम्पोज हो गए तो सैंक्शंस जब इम्पोज होते हैं जो तो रिफाइनरीज इन सैंक्शंस को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि उसके उनको इंटरनेशनल बैंक्स से डीलिंग करना होता है और अगर वो सैंक्शंस को मतलब को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ये फाइनेंशियल पेनल्टीज वगैरह हो जाएंगी तो इस वक्त हमने जैसे मैंने कहा रशिया से हमने ये ज्यादा क्रूड लेने का ये पॉलिसी शुरू किया था और अब फिर बंद कर दिया अब जब ईरान वॉर आई है तो वेवर आ गया तो फिर से रशिया से हमने लेना शुरू कर दिया तो ये जो पिविट चल रहा है पिविटिंग टू सूट नेशनल इंटरेस्ट ये मेरे ख्याल हर देश कर रहा है और सबसे सबसे मजेदार बात ये है कि ये जो पिविट हो रहा है ये बड़ी सक्सेसफुली हो रहे हैं
जी
तो अगर आप देखें इंडिया को भी हालांकि हमें बीच में थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी एलपीजी की लेकिन और किसी चीज की हमें शॉर्टेज नहीं है अगर हम अब अगर रूस से नहीं ले रहे हैं तेल तो हम यूएस से लेते हैं यूएस से नहीं लेते तो हम नाइजीरिया से लेते हैं हम गियाना से ले रहे हैं हम ब्राजील से ले रहे हैं तो इतने सारे एक तो कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनसे हम पहले तेल नहीं ले रहे थे अब ले रहे हैं और गियाना की बात करें तो गियाना की एक वो स्टडीज आई हैं हैं और रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां की जो आर्थिक हालत है वो एकदम बढ़ गई है, क्योंकि उनका एक तो ऑयल वेल ज्यादा आ गई है और वो तेल इतना ज्यादा बेच रहे हैं जो देश जैसे इंडिया उनसे खरीद रहा है इस वक्त.
एंड टू ऐड टू व्हाट यू से, वी हैड सो मेनी बायलैटरल एग्रीमेंट्स नाउ एंड द ऑस्ट्रियन चांसलर इज हियर, वी साइंड ट्रेड एग्रीमेंट्स विद देम आल्सो. एंड आल्सो टू ऐड टू व्हाट यू से, यूएस हैज बिकम द नेट क्रूड एक्सपोर्टर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर द सेकेंड, थैंक्स टू और नो थैंक्स टू द वेस्ट एशियन सप्लाई कॉन्फ्लिक्ट. All right, moving on to the forex reserves. India's foreign exchange reserves rose by $3.8 billion, surpassing $700 billion for the week ending April the 10th. According to the Reserve Bank of India, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $3.1 billion to over $555 billion during the week. Gold reserves climbed by $600 million to $121.34 billion. Special drawing rights rose by $56 million to $18.76 billion. Meanwhile, the central bank's position in the International Monetary Fund edged up by $41 million to $4.85 billion.
प्रतिक्रिया आपकी समझना चाहेंगे, कुल मिलाकर संतोषजनक स्थिति या सुखद स्थिति क्या मानेंगी आप अपने जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर?
बिल्कुल सुखद स्थिति है. अब $700 बिलियन हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं इस वक्त, इसलिए जो इस वक्त की जो तेल के दाम है इनसे हमें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारा जो ऑयल इम्पोर्ट बिल वो बढ़ता जाए और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसमें चले जाएं.
आइए आगे बढ़ते हैं. हमने एलपीजी की चर्चा की. सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देशभर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनी हुई है. नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और देशभर के वितरक केंद्रों पर कहीं भी आपूर्ति में कमी आने की सूचना नहीं है.
घरेलू एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है. हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है. कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है.
All right, that reminds me, Sushma, in one of your articles in a newspaper, you had strongly recommended that even though we may be comfortable with our energy supplies, thanks to the government's efforts, conservation is the key and we must all try to save energy, whether it's LPG, electricity, and I fully endorse that. And I remember there were ads at one time when we were growing, when we were young, in cinema halls and all, where the government used to say, aise khana banao, dhakke banao, taki LPG, you know, gas zaya na ho.
Yahan par Sushma ji, aapki pratikriya hum lena chahenge. Sarkar ne pehle bhi kaha tha ki LPG ki sankat nahi hai, kami dikh rahi, lekin sankat nahi hai. Yahan par ek bada mahatvapurna kaha ki jo ek ऑटोमेटिक यानी ऑनलाइन जो आपूर्ति की व्यवस्था है, यानी अपनी बुकिंग हम दूसरे माध्यमों के बजाय ऑनलाइन कराएं, या किस रूप में सहायक हो रहा है जो एक गैप बनता दिख रहा था उसको पाटने में, या जो कालाबाजारी जैसी स्थिति दिख रही थी उसको दूर करने में?
देखिए, ऑनलाइन तो वो बहुत ही मतलब जरूरी है, क्योंकि ये मिसमैच सप्लाई और डिमांड का फिर ऑयल कंपनीज अपने आप देख सकती हैं और अपने आप ये इसका
आपूर्ति कर सकती.
बिल्कुल.
All right. The government has recognized more than 55,000 startups during financial year 2025-26, marking the highest number of startups recognized in a single year since the launch of the Startup India initiative. The Ministry of Commerce and Industry said that as on the 31st of March, the number of recognized startups under the Startup India initiative has crossed a mark of 2,23,000, generating more than 23,36,000 direct jobs. The number of startups recognized also increased by 51.6% year-on-year in financial year 2025-26 compared to financial year 2024-25. Direct job creation also rose by 36.1% during the same period.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री येओ हानकू के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री गोयल ने दोनों देशों के बीच व्यापक और परस्पर लाभकारी साझेदारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आपसी व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। यहां पर हम आपकी प्रतिक्रिया इन दोनों खबरों पर समझना चाहेंगे। एक तो स्टार्टअप को लेकर जो अपने यहां अभियान चला, उसमें जो एक इकोसिस्टम बना, वह कैसा आपको दिख रहा?
भाई, वो स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बहुत ही इस वक्त बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, और खासकर कई मेट्रोज में। आपको तो पता ही है कि बैंगलोर हमारा सिलिकॉन वैली की तरह है, बैंगलोर में बहुत है, लेकिन इसके बजाय हैदराबाद में भी है, बॉम्बे में भी है और गुड़गांव में भी है। तो ये कुछ सेंटर्स हैं स्टार्टअप्स के, और वो बहुत सपोर्ट भी दे रही है सरकार इनको। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने इनको टैक्स बेनिफिट्स भी दिए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सरकार जो है थोड़ी सी इनसे दूरी रखती है ताकि इनको आराम से इनको कोई बहुत ज्यादा रेगुलेशंस नहीं, बहुत ज्यादा कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स नहीं, और कुछ भी होता है तो इसमें काफी पॉजिटिव एटीट्यूड है सरकार का कि भाई अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है हम इनको सुलझाने में के लिए तैयार है।
राइट All right, and the fact that we have so many startups linked to space speaks volumes about the fact that the government is really serious about promoting startups. All right, let's talk about oil. Global crude oil prices declined over 3% today. Optimism grew over potential US-Iran talks and a 10-day ceasefire between Lebanon and Israel, raising investor hopes that the conflict in West Asia may be nearing an end. Brent crude was trading 3.3% lower at $96.08 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 3.9% lower at $90.99 per barrel when reports last came in.
यहाँ पर सुषमा जी, हम तेल पर पहले चर्चा को थोड़ा सा समझना चाहेंगे और बढ़ाना चाहेंगे। भारतीय जो ऑयल बास्केट है, एक ओर हम तेल का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, दूसरी ओर तेल के कुछ उत्पाद हम दूसरे देशों को भी निर्यात करते हैं।
बिल्कुल निर्यात।
तो ये दोनों का जो संतुलन है, उसमें स्थितियां हमारे लिए अभी कैसी दिख रही हैं आपको?
देखिए, स्थिति हमारे लिए जैसे पूरे विश्व भर में बाकी देशों के लिए स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है, ये तो कहना हमें फ्रैंकली कहना चाहिए। स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि जो तेल के दाम हैं इस वक्त तो आ गए हैं, हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि 3% कम हुए, लेकिन फिर भी ये $90 से ज्यादा है
जी।
जो इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, एक डेढ़ महीना पहले तक, तो ये जो तेल के दाम थे अराउंड $65
जी, जी,
और अब आप $90 और $100 की बात कर रहे हैं, और $100 से कम आ गया तो हम बहुत खुश हैं
जी।
तो इस वक्त स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में हमारे पास एक तो रिजर्व्स हैं, 75 डेज ऑफ रिजर्व्स हमारे पास हैं कि कोई भी क्राइसिस हो तो हम इसको डील कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे पास बहुत रिफाइनरीज हैं और हम जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कोई शॉर्टेज नहीं है, और हमारे दाम जो है अभी वैसे के वैसे स्थिर बने रहे हैं।
Right, in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading flat at 1,53,470 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.4% higher at 2,52,900 rupees per kilogram a short while ago.
आइए आपको लिए चलें MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। जून अनुबंध के लिए सोने का मूल्य बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर 1,53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मई अनुबंध वाली चांदी 1.3% से अधिक बढ़त के साथ 2,51,986 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और यहीं पर श्रोताओं, आपकी ओर से हम अपने विशेषज्ञ सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
थैंक यू मनोज।
And friends, before we wind up, as a reminder of the headlines again, benchmark domestic indices rise, Sensex jumps over 500 points, Nifty settles above 24,350. Major Asian stock markets end in negative territory and global crude oil prices decline over 3%. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Oh,